मैं भी श्रोताओं का अभिनंदन करना चाहूँगी, और मैं ये चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। तो आज का जैसे टॉपिक है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले जो हमारा चैप्टर हमने पीसीपी में डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से तो हमें पता है, बल्ब जलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, एसी चलता है, हमारे लाइफ में तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते
जी।
पर इससे मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? हम सबको पता है मैग्नेटिज्म तो मैग्नेट से होता है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो आज हम यही देखेंगे। और इसके क्या क्या यूजेस हैं अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कैसे, और वो कौन कौन से अप्लायंसेस में यूज़ भी होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं। वो सारे मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं पर हमें नहीं पता कि ये ऐसे ही हो रहा है, तो उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो आज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि मैग्नेट्स होता क्या है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं उनके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंड देन हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक बेल के वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर समय रहता है तो इससे भी आगे चलेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम कहीं पे रखते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, या फिर किसी मैग्नेट को हम आगे पीछे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में देखेंगे, और उनके यूजेस के जैसे मैं बात कर रही थी तो जैसे एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, इन सब में ये सारे प्रिंसिपल यूज होते हैं, तो उनके कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे कि ये प्रिंसिपल वहाँ कैसे काम करता है
जी।
फिर हम सबसे ज़रूरी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, तो जब हम यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के बाद हमारी लाइफ में वो यूज हो रहा है, तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि सेफली हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज करें, क्योंकि नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर घर जल जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, बहुत ज़्यादा वो फैल जाता है, फिर तो हम सबको, क्योंकि उसको हम आजकल बहुत लार्ज स्केल में यूज कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसको सेफली कैसे यूज किया जाए, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि आप कहीं एक्सीडेंट में पड़ रहे हैं तो फिर उसमें जान भी जा रहा है, बहुत फैटल है, तो उसको सेफली कैसे यूज किया जाए उसको भी हम पढ़ाएंगे, सिर्फ यूज करना ही नहीं सिखाएंगे, सेफली कैसे यूज करना है वो भी जानना चाहिए
जी।
तो इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। तो पहले जैसे हमने कहा कि मैग्नेट्स क्या होता है, मैग्नेट्स हम सब ने देखा है, तो अगर हम कहते हैं कि मैग्नेट आपने देखा है तो एक छोटा सा पीस ऑफ मैग्नेट आपने देखा है, तो वो आया कैसे? मैग्नेट मतलब बचपन में तो बहुत इंटरेस्ट होता था कि हर एक चीज पे जाके उसको चिपकाते थे कि ये अट्रैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो एक्चुअली हमें तो इतना पता है मैग्नेट अट्रैक्ट करता है लोहे को, आयरन को अट्रैक्ट करता है, पर एक्चुअली ये डिस्कवर किया था ग्रीक पीपल्स, तो उन्होंने जब डिस्कवर किया था ये एक स्टोन के हिसाब से उन्होंने उनको मिला था पहले।
अच्छा।
और ये एक ऐसा स्टोन था जो आयरन, निकेल ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उन्होंने उसका नाम दिया था लोड स्टोन।
अच्छा।
और एक्चुअल में ये होता है, इस स्टोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड।
अच्छा।
तो इसमें आयरन ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है, तो ये जो लोड स्टोन के हिसाब से मिला उसके थोड़े बहुत कम, इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं था।
अच्छा।
तो फिर ये नेचुरल मैग्नेट है जो स्टोन के हिसाब से हमें मिलता है, फिर उसको देख के आर्टिफिशियल मैग्नेट तैयार किया गया।
अच्छा।
क्रिएट किया गया, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो थोड़े वीक मैग्नेट्स होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आर्टिफिशियली जो बनाया जाता है वो आयरन, निकेल और लेड से बनाया जाता है, और ये जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का उसको कहा जाता है मैग्नेटिज्म। तो सोली आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट से तो मैग्नेटिज्म हमें मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट से भी कैसे हम किसी चीज़ को मैग्नेट बना सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेट क्या होता है ये हमने देख लिया। तो आपको डिफरेंट शेप ऑफ मैग्नेट्स मिलते हैं, अगर आपने साइंस लैब में देखा होगा या फिर आपके घर में जो एपरेटस मशीन्स होते हैं जिसमें मैग्नेट यूज होता है, वो कभी किसी शॉप में जहाँ रिपेयरिंग होता है वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे शेप ऑफ मैग्नेट्स होते हैं। आपने जो देखा है या तो बार मैग्नेट देखा होगा या फिर किसी मैग्नेट का टुकड़ा जो ऐसे आजकल तो जो हैंडबैग होता है उसमें भी मैग्नेट लगा हुआ होता है, वो तो टुकड़े के हिसाब से नॉर्मली जो शेप आता है वो बार मैग्नेट जो बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर रॉड के हिसाब से रहता है।
अच्छा।
अगेन आपका हॉर्स शू मैग्नेट होता है एक यू शेप का मैग्नेट।
अच्छा।
उसको हॉर्स शू कहा जाता है क्योंकि उस शेप में होता है। और जो दूसरे हैं वो होते हैं सिलिंड्रिकल मैग्नेट जो एक सिलिंड्रिकल शेप में होता है, सर्कुलर मैग्नेट जो सर्किल फॉर्म में आता है हम लोगों के पास डिफरेंट बैग्स ये सब में भी आ जाता है वो, एंड रेक्टेंगुलर मैग्नेट वो एक बिल्कुल रेक्टेंगुलर ब्रिक के हिसाब से ही आता है।
अच्छा।
तो ये डिफरेंट शेप्स होते हैं जो नॉर्मली यूज होता है वो बार मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट्स आप देख सकते हैं।
अच्छा।
तो ये तो मैग्नेट्स के शेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस होता है तो उनमें ये मैग्नेट्स को हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इसको, या तो पकड़ने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए। अब डिफरेंट कहाँ कहाँ यूज हुआ है अब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वहाँ क्यों यूज हो रहा है। नॉर्मली जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपको मिलेंगे उसमें एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि आपके मोटर में होता है, लाउड स्पीकर में होता है मैग्नेट्स, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और जैसे बाकी हमारे जनरेटर्स में होते हैं उसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। अब ये कैसे होता है आप आगे देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे जब। तो जब ये तो नॉर्मली आपको मैग्नेट के बारे में ये सब पता होता है कि अट्रैक्ट होता है, ये होता है, वो होता है, या फिर अप्लायंसेस में यूज होता है। अब हम साइंस के अंदर अगर जाएंगे तो मैग्नेट का एक बिल्कुल ही जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो होता है जब आप मैग्नेट को बिल्कुल फ्रीली सस्पेंड कर देंगे। एक बार मैग्नेट लीजिए, उसमें एक धागा बांध देते हैं और उसको अगर आप ऐसे झुला के रखेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रहता है।
अच्छा।
तो ये एक उसका बेसिक प्रॉपर्टीज है। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करते थे सेलर्स जब बिल्कुल समंदर में वो नाव लेके चले जाते थे और वहाँ पे कोई डायरेक्शन
दिशा निर्देश नहीं मिलता था।
अच्छा। और उनके पास मैप होता था कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, तो वो उस डायरेक्शन जानने के लिए मैग्नेट्स की इस्तेमाल करते थे क्योंकि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रहता है।
अच्छा।
तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दोनों एंड को हम कहते हैं पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो आप जब एक बार मैग्नेट जो यूज होता है लेबोरेटरी में वो अगर लेकर देखेंगे तो उसमें एक साइड में कैपिटल एन लिखा हुआ होता है, एक साइड में कैपिटल एस। तो जो कैपिटल एन लिखा है वो नॉर्थ पोल है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, एंड जो एस लिखा है वो साउथ पोल है, वो साउथ डायरेक्शन में ही रहता है। तो अब आप कहीं भी खड़े हैं और अगर आपके पास मैग्नेट है तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। अब तो एक तो हमने देख लिया कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट होता है, उसकी एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। अगेन और एक भी आपको पता है कि ये हमेशा आयरन को अट्रैक्ट करता है, ये उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है
जी।
तीसरा हम बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। इस केस में भी क्या होता है, मैग्नेट के केस में लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। तो लाइक पोल्स मीन्स या तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ अगर हम ले आते हैं तो रिपेल करेंगे, दो मैग्नेट के अगर सेम पोल हम पास पास ले आते हैं तो वो रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट पोल नॉर्थ और साउथ को पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ये भी आप बिल्कुल जादू की तरह बच्चों को दिखा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसको करने के लिए एक मैग्नेट को धागा बांध के फ्रीली झूला सस्पेंड कर दीजिए,
एयर भी छोड़ दीजिए,
और दूसरे मैग्नेट बार मैग्नेट को उसके पास लेकर आइए। तो देखेंगे अगर सिमिलर पोल्स आप पास लेकर आ रहे हैं तो वो जो फ्रीली सस्पेंड है एयर में वो हट जाएगा, अपने आप ही पीछे हट जाएगा।
अच्छा।
और अगर डिसिमिलर पोल्स को लेकर आ रहे हैं तो देखेंगे वो अपने आप ही पास आ जाएगा,
नॉर्थ और साउथ के अगर दो हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे
जी। तो ये बचपन में तो बहुत ही मजेदार लगता था, हम तो बहुत ही करते थे स्कूल्स में जब टीचर ये दिखाते हैं
एक्सपेरिमेंट
करके, या फिर घर में भी आपके पास मैग्नेट मिल जाता है तो ये तो हमारा खेल बन जाता है जी। और ये था हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। फोर्थ है कि अगर एक आयरन के पीस को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास काफ़ी देर तक लगा के रख देंगे, आयरन को अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट, तो ऐसे चिपका के कुछ देर तक रख लेते हैं या फिर थोड़ी देर उसके ऊपर घिस लेते हैं, उसके बाद उस आयरन नेल को लेकर किसी आयरन जैसे स्प्रिंकल होता है छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स होते हैं उसके पास ले जाएंगे तो वो आयरन नेल भी अट्रैक्ट करने लगता है।
अच्छा,
वो ही मैग्नेट बन
क्वालिटीज यानी कि
मतलब थोड़ी देर के लिए उसमें मैग्नेटिज्म
आ जाता है
और थोड़ी अमाउंट में। अच्छा। अगर उसके पास थोड़ी देर उसको उसमें रख लेते हैं
जी।
और एक हुआ कि उसके पोल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने कहा, तो अगर हमने एक मैग्नेट का एक साइड में नॉर्थ पोल है एक साइड में साउथ पोल है उसको हम तोड़ देते हैं तो दो पीस हो गया, तो एक साइड में नॉर्थ पोल रह गया एक साइड में साउथ पोल रह गया, तो ये सेपरेट हो गया। पर ऐसा नहीं होता, वो जो पीस बन गया है एक तो जैसे साउथ पोल साइड था वो साउथ पोल उसमें रह गया, और जो दूसरा जो ब्रोकन साइड में वो ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जो नॉर्थ पोल तो पहले था ही दूसरे पीस का, और जो ब्रोकन पीस है मिडिल में वहाँ पे साउथ पोल ऑटोमेटिक बन जाएगा। मतलब आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। और एक एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट लीजिए और कुछ आयरन फिलिंग्स पार्टिकल्स ऑफ आयरन्स लीजिए, और उसको उस आयरन फिलिंग्स के पास उस मैग्नेट को लेकर आइए, तो आप देखेंगे कि वो आयरन फिलिंग्स मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। पर आप देखेंगे कि जो बार मैग्नेट है उसके दोनों एंड में बहुत सारे आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगे, और जो बीच का हिस्सा है मिडिल में बहुत ही कम चिपकेंगे। इसका ये मतलब होता है कि दोनों पोल और दोनों एंड में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है और मिडिल में कम होता है। तो ये थे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड मतलब एक एरिया को हम देखते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात कर रहे थे कि कहीं पे एक चार्ज रखा हुआ है तो उसके सराउंडिंग एरिया में कुछ डिस्टेंस तक आपको उसके अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी नज़र आता है, या फिर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव प्रॉपर्टी नज़र आता है। सिमिलरली एक मैग्नेट आपने देखा होगा, ये चीज़ बहुत खराब ही होगा बचपन में कि जैसे ही मैग्नेट रखते हैं और एक पिन को हम थोड़ा सा दूर रख लेते हैं तब भी वो पिन खींच के चली आती है, थोड़ा और दूर कर लेते हैं फिर भी आ जाती है, और दूर कर लेते हैं ऐसे ऐसे कुछ दूरी के बाद और वो नहीं खींच के आ जाती। तो जहाँ रखने से वो खींच के आ जाती है हम कहेंगे वहाँ पे उस मैग्नेट की
फील्ड
फील्ड है, मतलब वहाँ पे
प्रभाव है वो फील्ड है
जी बिल्कुल. तो जितने एरिया तक उसका वो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आपको नजर आता है वो उसका फील्ड है.
अच्छा,
तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड. तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक डायरेक्शन होता है. जो फील्ड हम बोल रहे हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया क्रिएट होता है जहाँ पे वो मैग्नेटिक फोर्स को आप फील कर सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड है. और उस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या है उसको जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जानने के लिए आपको एक मैग्नेटिक नीडिल लाना पड़ेगा.
अच्छा,
और एक मैग्नेट, और आप नॉर्थ पोल से उसमें रखेंगे, उसमें मैग्नेटिक नीडल में एक नीडल होता है जो ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रह जाता है.
अच्छा,
तो उसी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को आप पॉइंट आउट कर लीजिए. ऐसे ऐसे करके आप मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक के चारों ओर रखेंगे नॉर्थ टू साउथ पोल तक, तो आपको एक लाइन मिल जाएगा.
अच्छा,
जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये आपके बुक में इसका फिगर भी दिया हुआ है. आप देखेंगे बुक वन के पेज नंबर 398 में आपका फिगर नंबर 17.4, तो उसमें देख सकते हैं ये जो मैग्नेट के चारों तरफ जो लाइंस कर्व्ड लाइंस दिए हुए हैं ये हैं आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो ये जो फोर्स लाइंस ऑफ फोर्स है इसके किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन पता करना है तो उस पॉइंट पे उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए. वो टेंजेंट शो करता है मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है वो टेंजेंट. तो ऐसे आपको पता चल सकता है. तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं इनके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि ये हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होंगे एंड साउथ पोल में ही खत्म होंगे. उल्टा डायरेक्शन कभी नहीं चलता है. और आप देखेंगे कि जो पोल है वहाँ पे लाइन सारे बहुत क्लोज टू ईच अदर रहते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है.
अच्छा,
और जैसे ही आप दूर जाएंगे सेंट्रल एरिया में तो आप देखेंगे कि वो लाइन्स बहुत ही अलग अलग हैं. डिस्टेंस उनके बीच में बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है. दूसरी बात यह है कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे. सारे पैरेलल लाइंस होते हैं, ये कभी क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को. तीसरा है कि जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये बहुत ही क्लोज होते हैं जहाँ पोल्स के पास, और जो मिडिल के एरिया में वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं. इसका मतलब है पोल्स के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स. जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड कहीं कहीं पे होता है. जी बिल्कुल, अर्थ भी हमारा एक बहुत बड़ा मैग्नेट, जितना बड़ा अर्थ है उतना बड़ा मैग्नेट के हिसाब से वो बिहेव करता है. क्योंकि हमारे जो अर्थ है, अगर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ के अंदर हम जाते हैं तो उसमें एक कोर है जहाँ पे आयरन मेटल बहुत ज़्यादा है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है. तो जैसे ही अर्थ घूमता है तो वो कोर भी उसके साथ साथ आयरन घूमता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है.
अच्छा,
इसलिए हमारा अर्थ बिहेव करता है एक
मैग्नेटिक फील्ड बनकर.
हाँ, मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि इतना बड़ा मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है. तो ये जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन सा है, ये इसका भी पोल होना चाहिए क्योंकि मैग्नेट है तो पोल होना ही चाहिए. तो जो हमारा नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, वो उसके आसपास ही हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी, जो अर्थ मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल भी उसी के आसपास ही रहता है. और जो अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल है उसी पे, उसी जगह ही कहीं आसपास हमारा अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल रहता है. लेकिन एग्जैक्टली नहीं रहता नॉर्थ, जो हमारा नॉर्थ साउथ लाइन है उसके साथ एग्जैक्टली फॉल नहीं करता. उस लाइन के साथ एक टिल्टेड होके रहता है 11.3 डिग्री करके.
अच्छा,
जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो ज्योग्राफिक एक्सिस है उन दोनों के बीच में एक एंगल होता है 11.3 डिग्री. मतलब दोनों आसपास हैं, बिल्कुल सेम लाइन पे फॉल नहीं करते. तो जो आपने कहा था अर्थ भी एक मैग्नेट है, वो एक्चुअल में अर्थ एक जायंट मैग्नेट है, बहुत ही बड़ा मैग्नेट है. और इस वजह से वो जो सेलर्स जाते हैं और वो मैग्नेट ऐसे बिहेव करता है, उसी वजह से ही करता है.
अच्छा.
और जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाएंगे, ये अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे.
हाँ
जी. इसके भी बहुत सारे और डिटेल्स हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे. तो अभी के लिए तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको. आगे बढ़ते हैं हम कि हमने तो मैग्नेट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया कि ये कैसे होता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. तो मैग्नेट के बारे में हमने जान लिया, इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था. अब हम टॉपिक के ऊपर आएंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट और इलेक्ट्रिक, इन दोनों को हम कैसे कंबाइन करेंगे.
अच्छा.
तो इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक करंट, एक वायर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे. तो आप देखेंगे कि उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. इसकी भी बड़ी कहानियाँ, मतलब ये अचानक से हम इतना यूज कर रहे हैं तब भी हमें ये नहीं पता चलता. लेकिन साइंटिस्ट ने अचानक कुछ और एक्सपेरिमेंट करते करते उनको ये पता चला था कि जब करंट फ्लो हो रहा है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है. आप भी उसको टेस्ट कर सकते हैं. एक वायर लीजिए, बैटरी लीजिए और बैटरी के दोनों टर्मिनल को वायर के दोनों एंड से जॉइंट कर दीजिए. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, एक मैग्नेटिक नीडल जो मैं बात कर रही थी उसको अगर उस वायर के पास रखेंगे, पहले से ही रख लीजिए बिना करंट फ्लो करे, आप देखेंगे वो बिल्कुल रेस्ट में है. जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, आप देखेंगे कि वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, हिलना शुरू हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा. तो इससे आपको पता चलेगा कि उस वहाँ पे एक मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल तब डिफ्लेक्ट होता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है,
बन जाती है वहाँ
मैग्नेटिक फील्ड के पास ही वो डिफ्लेक्ट होता है. तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के बाद अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है. अगर आपने वो दोनों एंड को चेंज कर देंगे, वायर के दोनों एंड को अगर चेंज कर देंगे, तो देखेंगे कि वो उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया. तो ये सारे उसके एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो सकता है. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम करंट कैरिंग वायर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा टॉपिक का नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जब वायर में फ्लो होता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है. तो इसके ये दिमाग में आता है कि हम एक मैग्नेट भी क्रिएट कर सकते हैं मैग्नेटिक करंट फ्लो करा के. तो ऐसे मैग्नेट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. एक तो हमने पढ़ा था नेचुरल मैग्नेट के बारे में, जो नेचर से हमें मिलता है. एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट के हिसाब से यूज होता है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है. और एक है ऐसा मैग्नेट जो जब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा होता है तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है. जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बंद हो जाता है उसका मैग्नेटिज्म भी ज़ीरो हो जाता है. वैसे मैग्नेट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर, शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, उसको सिलिंड्रिकल शेप में फोल्ड कर लीजिए. अब उसके ऊपर कॉपर वायर लेके टर्न गोल गोल करके उसके ऊपर राउंड राउंड बांध दीजिए. तो ये जो बन गया इसको हम कहेंगे एक सोलेनॉइड. इसके जो कॉपर वायर आपने उसके ऊपर गोल करके बांध रखा है, उसके दोनों एंड को सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से आप जॉइंट कर दीजिए. तो जैसे ही आपका करंट फ्लो करना शुरू होगा, देखेंगे वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा. वो जो सोलेनॉइड आपने बनाया है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन करेगा. जैसे ही अगर आपने दोनों टर्मिनल को रिवर्स कर देंगे तो जो मैग्नेट आपका बना था सोलेनॉइड उसका भी पोल रिवर्स हो जाएगा, और अगर आप करंट फ्लो बंद कर देंगे देन वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बंद हो जाएगा। तो ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आप इसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो सोलेनॉइड आपने बनाया है मैग्नेट, वो पेपर का फोल्ड करके सिलेंडर बनाया है, उसके अंदर कुछ सॉफ्ट आयरन लाइक आयरन नेल्स उसके अंदर डाल दीजिए, तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और जितना आप स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहें उसका बढ़ा सकते हैं। और ये यूज़ कहाँ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत जगह यूज होता है, ये यूज होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि आपका मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल बेल, MRI मशीन्स, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। जो आजकल सुपर फास्ट ट्रेन चल रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज होता है। आपने साइक्लोट्रॉन का नाम सुना होगा जो एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, बड़े बड़े लैब में यूज होता है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज होता है। तो जो हमारा बार मैग्नेट की बात हम कर रहे थे, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, जो बार मैग्नेट है वो एक परमानेंट मैग्नेट है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोरेरी मैग्नेट है, जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक वो मैग्नेट बना रहेगा, जब करंट फ्लो बंद हो जाएगा वो मैग्नेट नहीं रहेगा, लेकिन जो बार मैग्नेट वो परमानेंट है और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट ही रहता है। और बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ जो है इसको ना आप इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, जो आया है परमानेंट है, कॉन्स्टेंट है उसका स्ट्रेंथ, पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको आप उसका स्ट्रेंथ को या इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, करंट फ्लो को ज़्यादा कम करके आप मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बार मैग्नेट वीक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ क्योंकि हम इंक्रीज कर सकते हैं तो किसी भी लेवल तक हम इंक्रीज कर सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के हिसाब से यूज होता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड आप कंट्रोल कर सकते हैं। बार मैग्नेट के पोल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, जो साउथ पोल है जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल ही है, पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पोल्स हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपने जो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो उसके पोल भी चेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल जो हमारे घर में लगे होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, तो ये कैसे काम कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक बेल में होता है एक यू शेप और हॉर्सशू शेप मैग्नेट, तो इसमें एक सॉफ्ट आयरन रखा जाता है उसके दोनों आर्म के बीच में, और ये एक्ट करता है इस एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के हिसाब से, और ये जो सॉफ्ट आयरन हम डाल रहे हैं उसको कहा जाता है कोर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को दोनों एंड को हम जॉइन करेंगे एक पावर सप्लाई से, इलेक्ट्रिसिटी कोई बैटरी यूज़ कर रहे हैं या फिर मेन सप्लाई से जॉइन कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे, और उन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि एक पुश बटन होता है, एक बटन है जिसको हम प्रेस करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक दैट सॉफ्ट आयरन कोर विल गेट मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो वो उसमें जो आर्मेचर लगा हुआ है उसको वो पुल करेगा। जैसे ही पुल करेगा आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपके पास अगर किताब आपके सामने रखा हुआ है तो पेज नंबर 403 बुक 1 में देख सकते हैं कि वो जो हैमर है वो जाके वो बेल में बीट करेगा, जैसे ही बीट होगा तो वहाँ पे आवाज़ आता है, फिर उसमें एक स्प्रिंग सिस्टम है जिससे वो फिर से पीछे आ जाएगा आर्मेचर, फिर जब आप पुश करेंगे बटन को फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। तो ऐसे ही बेल जो इलेक्ट्रिक बेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करते हैं। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कैसे आता है जब उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब तक हमने देखा कि करंट अगर फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब हम देखेंगे कि एक मैग्नेट रखा, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर को या फिर कंडक्टर को लेकर आएंगे तो उसके ऊपर कैसे इफेक्ट आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप मैग्नेट लेकर आ रहे हैं तो एक मैग्नेट के वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे ही चेंज होंगी तो वैसे ही आपके करंट प्रोड्यूस होंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें एक आप मैग्नेट लेकर आइए और उसमें एक करंट कैरिंग वायर, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जैसे ही उसमें एक हम करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर आते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए परपेंडिकुलर होता है। तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही आसान है। आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच कीजिए, आप फिगर में भी देख सकते हैं पेज नंबर 405, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों फिंगर को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर पोजीशन में स्ट्रेच कीजिए। अब आप देखेंगे कि अगर आपका फर्स्ट फिंगर और द इंडेक्स फिंगर डिनोट करता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फील्ड ये आप याद कर सकते हैं, फर्स्ट फिंगर फील्ड को डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, सेंट्रल करंट ऐसे याद करेंगे CC। तो मिडिल फिंगर डिनोट करता है करंट को, फर्स्ट फिंगर डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, देन द थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसे ही आप फोर्स का डायरेक्शन देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये निकाला था साइंटिस्ट माइकल फ्लेमिंग ने ये रूल दिया था, इसलिए इसको कहते हैं हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो ऐसे ही हम एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक कंडक्टिंग वायर और कंडक्टर को लेकर आते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसका डायरेक्शन, उस वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे ही करंट फ्लो का डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे, वो लेफ्ट हैंड रूल से भी आप देख सकते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो डिसाइड करता है कि जो फोर्स अप्लाई होगा जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग वायर को लेकर आएंगे या फिर करंट फ्लो कराएंगे उस कंडक्टर में, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। अब हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल यूज होता है कौन कौन से अप्लायंसेस पर। हमने बिल्कुल शुरुआत में भी ये बात कही थी कि हम यूज़ तो करते हैं बहुत सारे अप्लायंसेस पर हम ये नहीं कभी सोचते हैं कि उसमें हो क्या रहा है, क्या कौन से प्रिंसिपल ये चल रहा है। तो ये जो आज हम पढ़ाई कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक सिंपल सा प्रिंसिपल, एक छोटा सा है कि एक इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और अगर एक मैग्नेट के अंदर एक वायर को लेकर आते हैं तो वो मूव करने लगेगा। आपको मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, पर आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको रख देंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर अपने आप उसमें फोर्स अप्लाई होगा। तो ये प्रिंसिपल के ऊपर बना हुआ है आपका जनरेटर। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर दो टाइप के होते हैं। एसी जनरेटर का मतलब होता है जिसमें एसी प्रोड्यूस होता है, करंट जो प्रोड्यूस होता है वो अल्टरनेटिंग करंट है, और डीसी जनरेटर में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट है। पर ये कैसे काम करता है और जनरेटर होता क्या है, जो शादी ब्याह में चलाते हैं आप जनरेटर, वो करता क्या है जब लाइट चली जाती
जब
है,
जब लाइट चली जाती है तो एक बहुत बड़े सब्स्टिट्यूट होता है।
हाँ, बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट होता है, एक बड़ा सा हैवी मशीन है। हाँ, जिससे आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। साइंस के लैंग्वेज में इसको बोलें तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अच्छा।
हम जो पेट्रोल या डीजल डाल रहे हैं, हाँ, वो क्या करता है, वो मशीन को घुमाता है। तो वो उसके घूमने से वो मैकेनिकल एनर्जी हो गया। तो उसके घूमने से मैग्नेट घूमता है, कंडक्टर घूमता है, और करंट प्रोड्यूस होता है,
इट कन्वर्ट इनटू
इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो अभी हमने पढ़ा कि हम मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही काम करता है। जैसे वो चलता है, आपका मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंजेस चेंज होता है, उसके वजह से द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंज होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है।
ओके।
तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ही वो काम करता है। तो अगर डिटेल में देखें कि उसमें क्या क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। नॉर्मली एसी जनरेटर का आएगा, डीसी जनरेटर भी सेम प्रिंसिपल में काम करता है, एक छोटा सा डिफरेंस है, बस उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। पर एसी जनरेटर के डिटेल्स में होता है, उसमें एक बड़ा सा परमानेंट मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस दोनों मैग्नेट के बीच में हम एक कॉयल रखेंगे, रेक्टेंगुलर कॉयल, जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, और उसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर डालेंगे, उसको कहते हैं हम आर्मेचर। ये टोटल जो रेक्टेंगुलर कॉयल है उसको आर्मेचर भी कहा जाता है। इस कॉयल को हम रखेंगे परमानेंट मैग्नेट के बीच में, और वो जो कॉयल के एंड होते हैं उनमें दो रिंग लगे होते हैं, दोनों रिंग के बीच में वो रहेगा, एंड दो ब्रश लगे होते हैं ईच कॉयल के साथ, दोनों रिंग के साथ एक एक ब्रश लगे हुए होते हैं। तो जैसे ही कॉयल मूव होता है, पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं, वो मूव कराएगा। तो जैसे ही कॉयल मूव होता है, क्योंकि वो दो मैग्नेट के बीच में है और दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, सीधे सीधे ऊपर से नीचे तक आप ये फिगर देख सकते हैं अपने किताब में, बुक वन फिगर नंबर 17.13 पेज नंबर 408। तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, वो जैसे ही कॉयल रोटेट होगा वो कट करेगा, लाइंस ऑफ फोर्स को कट करेगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगे लिंक्ड विद द कॉयल, वैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगा, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू हो जाएगा।
अच्छा।
तो अब एसी जनरेटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें अल्टरनेटिंग करंट क्रिएट होता है। ये जो घूम रहा है ये क्या होता है, आपने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, तो अब ये डायरेक्शन जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, ये जो मूव हो रहा है फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, और उस हिसाब से करंट के डायरेक्शन भी आप पा सकते हैं। तो ये जो करंट का डायरेक्शन आप देखेंगे कि वो अल्टरनेटिंगली चेंज होता रहता है, एक बार जिस डायरेक्शन में जाता है, दूसरी बार दूसरे टर्न के लिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसलिए उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं।
अच्छा।
तो एसी जनरेटर से हमारी एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। डिटेल में आप अपने बुक में देख सकते हैं कि कैसे कैसे, जैसे ही ये मूव होता है कैसे उसको कट करता है और वो करंट का डायरेक्शन कैसे होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आप किताब पे नहीं जाके फिगर को देख के अगर आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये। तो ये तो डीसी जनरेटर के बारे में हमने पढ़ा, और ये जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि जो हमने कॉयल यूज किया है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट यूज करा है उस कितना स्ट्रांग है, जितना ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेट आप लेंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है. एंड स्पीड ऑफ द कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड, हम या तो कॉयल को मूव कराएंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे. तो जिस रेट से वो चेंज हो रहा है या फिर कॉयल घूम रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा जल्दी चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा. तो ये डिपेंड करता है इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर. तो हमने मैग्नेटिक एसी जनरेटर कैसे करंट प्रोड्यूस करता है देख लिया, और प्रिंसिपल कैसे काम करता है. अब डीसी जनरेटर भी सेम ही प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है. सिर्फ एक सिंगल डिफरेंस होता है, जो एसी जनरेटर में हमने रिंग यूज़ किया है वो कंप्लीट रिंग होता है, बट डीसी जनरेटर के केस में वो हाफ रेक्टेंगुलर रिंग्स होता है, वो कट होता है. और इसमें ये इंटरेस्टिंग होता है कि एक कट से दूसरे कट में तो वो फिर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कैसे आता है. पर वो ऐसे होता है कि जब एक रिंग के साथ लगा है और उस फोर्स जो अप्लाई होता है उसके वजह से वो इनर्सिया के वजह से वो घूम जाता है. रिंग नहीं भी है तो वो घूम के आ जाता है उस इनर्सिया की वजह से और सेकेंड रिंग से अटैच हो जाता है. तो ऐसे ही उसमें भी करंट प्रोड्यूस होता है, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है. तो ऐसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई कर सकते हैं अपने अप्लायंसेस में. कैसे होता है ये हमने डिस्कस किया. तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के ऊपर जब हमने बात कर ली है उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगी. अल्टरनेटिंग करंट मतलब जो हमारे घर में आता है ये बिजली, वो अल्टरनेटिंग करंट ही है. और डीसी करंट है जो आप सेल यूज करते हैं बैटरी, उससे जो करंट आता है वो डीसी करंट है. नॉर्मली हम जो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट है. मैं बता दी हूँ कि अल्टरनेटिंग होता क्या है. वो दोनों डायरेक्शन, एक बार आधे साइकिल, एक साइकिल होता है, आधा साइकिल वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा आधा साइकिल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. अच्छा. मतलब आपके घर में जो बिजली आता है हमारे यहाँ 50 हर्ज, मतलब एक मिनट में या फिर एक सेकंड में वो 50 बार चेंज होता है. 50 बार अप साइड और 50 बार डाउन साइड.
अच्छा.
ऐसे ही चेंज होता रहता है. मतलब आपके घर में जो बल्ब जलता है जब करंट आ रहा है मैक्सिमम, फिर जीरो हो जाएगा, बल्ब बंद हो जाएगा, फिर जलेगा, फिर जब ये जीरो मैक्सिमम, लोअर मैक्सिमम टू जीरो आएगा, फिर बल्ब बंद हो जाता है. मतलब एक सेकंड में आपका बल्ब 100 बार बंद होता है, 100 बार जलता है.
अच्छा.
आपको दिखाई देता है?
नहीं,
नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक सेकंड में अगर इतने बार हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो परसेप्शन ऑफ विजन है वो उससे ज्यादा है, इसलिए हम ये शॉर्ट टाइम इंटरवल को देख नहीं सकते.
अच्छा.
तो हमें लगता है कि ये कॉन्टिन्यूसली जल रहा है, अदरवाइज ऐसे ही होता है एसी करंट के केस में.
अच्छा.
तो डिटेल एसी और डीसी करंट के बारे में हम अगले लाइव प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और सेफली इसको कैसे यूज किया जाए, क्या क्या हम सेफ्टी मेजर ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. आज के लिए हमने डिस्कस किया मैग्नेट्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं. फिर हम आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, जहां हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, एंड हाउ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ए मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, एंड हाउ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट. तो उसके क्या प्रिंसिपल होते हैं, और उसके बेसिस पे हमने एसी जनरेटर में ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है विद द यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये हमने डिस्कस किया.